बलराम बार-बार आवृत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूजा करो, यहाँ यह अर्पण करो, यह करो और तुम बोलो, तो बोलती जा रही थी। अद्य भी बहुत प्रकार के जल से पूजा की, गंध, गंध का अर्थ है चंदन आदि से, अक्षत, अखंडित चावल से, अक्षत कहते हैं जो टूटा हुआ चावल को अक्षत नहीं कहते हैं, जो अक्षत छत न हो, टूटा न हो, पूरा हो, अखा चावल हो, उसको अक्षत कहते हैं। तो उस अक्षत से पूजा, धूप, धुआं अगरबत्ती, उसे धूप, और धूप है वास, वस्त्र, श्रक, माला और माल्य, फूल और भूषण, नानोपहार वाले भी, अनेक प्रकार के उपहार भी, जैसे नैवेद्य आदि, और प्रदीपावली भी, और प्रदीप अवली, प्रदीप अवली का अर्थ है 5, 7, 9 दीपक के आरती कर रहे थे, प्रदीपावली का। इस तरह से बार बार उन्होंने किया। विप्र स्त्रीय पतिमतीस तथा तय सम पूजयत, लवणापूप तांबूल कंठ सूत्र फलेक्ष भी, विप्र स्त्रीय पतिमतीस तथा तय सम पूजयत। तो उन वस्तुओं से रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के पत्नियों की भी पूजा किया। और कौन कौन वस्तु, लवण, पूप, तांबूल, कंठ सूत्र, फलेक्ष भी, इसके द्वारा पार्वती जी की पूजा की गई, पर उन्हीं वस्तुओं से, प्रसाद से उन्होंने ब्राह्मण के पत्नियों की भी पूजा की। कई सम पूजा रुक्मिणी जी ने पूजा की। इतना विवेक था कि ये भी हमारे गुरु हैं और इनका भी आदर होना चाहिए। तस्य स्त्रियस्ता प्रददु शेषम जुजुराशिषः ताभ्यो तिब्देव्यै नमश्चक्रे शेषम च जगृहे वधु। तस्य स्त्रियस्ता प्रददु, जो भी उपहार चढ़ाया जाता था दुर्गा जी को या उन स्त्रियों को, तो उसमें से कुछ से प्रसाद दिया स्त्रियों ने रुक्मिणी जी को। शेषम, शेषम और जुजुराशिषः आशीर्वाद दी, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। और ताभ्य देव्य नमश्चक्र, ताभ्य देव्य नमश्चक्र शेषम च जगृहे वध। ताभ्य ने उनको और देवी को सबको नमस्कार किया रुक्मिणी जी ने, और उन्होंने शेष प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद मुनि व्रत त्याग दी, मौन व्रत जो था रुक्मिणी जी का त्याग दी, इसका की कुछ बात करने लगे सखियों से। मुनि व्रत मथ त्यक्त्वा निश्चक्रांबा निश्चक्रांबिका गृहात प्रगृह पाणिना अभृत्याम रत्न मुद्रोपशोभिना। तो पूजा करके इसके बाद मौन व्रत त्याग दी। अब वो बोलने लगी, बात करने लगी, श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा था। अब वह समय आ गया जब रुक्मिणी जी चाहती थी कि भगवान मेरा हरण करें, अब घर लौटने के लिए तैयार हुई। तो उस समय प्रगृह पाणिना भृत्याम रत्न मुद्रोप शोभिना, तो उस समय रुक्मिणी जी अपने दासी को पकड़े हुए थी, सखी को, एक हाथ से, जिस हाथ में रत्न मुद्रोप शोभिना, रत्न की मुद्रिका थी जिस हाथ में, तो उससे वे भृत्या के कंधे को पकड़ करके चल रहे थे। तो जब वे भवानी के भवन से निकले, मंदिर से निकले, उस समय सब लोग रुक्मिणी जी को देखने के लिए जुटे हुए थे। जो भी आए थे बारात या सेना में, तो सबकी इच्छा थी कि देखें कन्या काशी है, तो सब लोग देखने के लिए खड़े थे। और यह भी आशंका थी कि कृष्ण इसका हरण कर सकते हैं, अतः वे लोग बहुत तैयारी में थे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस तरह से उन लोगों ने देखा रुक्मिणी जी को और देखने का क्या प्रभाव हुआ। ताम देव मायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमाम कुंडलमंडितानाम श्यामाम नितंबार पितरत्नमेखलाम व्यंजस्तनिम कुंतल संकितेक्षणाम। रुक्मिणी जी मूर्तिमान भगवान की माया शक्ति जैसी लग रही थी। यह माया शब्द कहने का अर्थ है कि मोहकता शक्ति थी, मोह लेने वाली थी। सबका सबकी आंखें और सबके कान सब कुछ इधर ही खींच गए, देखने में व्यस्त हो। इसको माया कहते हैं। यहाँ माया शब्द का इतना ही मतलब है कि मोहिनी, परम आकर्षक। देव माया में वीर मोहिनी, वीरों को मोहित करने वाली सुमध्यमान। रुक्मिणी जी का मध्य भाग बहुत सुंदर था, अर्थात तो कृषोदरी थी। और ये सुमध्यमा शब्द का अर्थ होता है सुंदरी, परम सुंदरी, क्षीण कटी वाली। कुंडल मंडिताना नाम, और कानों में कुंडल झूल रहे थे चलने से, उसके कारण मुख और सुंदर लग रहा था। श्यामाम, ये बिल्कुल किशोरी अवस्था की थी। और नितंबर पितरत्न मेखलाम, नितंब पर रत्न की मेखला करधनी थी। और व्यंजस्तनी, यौवन को सूचित करने वाले स्तन कुछ प्रकाशित हो रहे थे। कुंतल संकित क्षण, जब आंखों पर कुंतल गिरते थे, उनके केश जब आंखों के सामने आते थे तो उसमें संकित हो रहे थे। संकित हो रहे थे मतलब केशों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। संकित क्षण का है यह अर्थ है कि आंखों में एक चिंता थी रुक्मिणी जी के, और जब केश आगे गिरते थे आंखों पर तो उससे और उद्विग्न हो जाती थी, क्योंकि अब वो अपने प्रियतम भगवान को देखना चाहती थी, तो केशों का आगे गिरना आंखों पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे वे हटा रही थी। सुचि स्मितांबिंब फलाधर द्युति सोणायमान द्विज कुंद कुडमलाम पदा चलंतिम कलहंस गामिनी सिंजत कलानुपुर धाम शोभिना। तो उस समय चल रहे थे, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इस भाव से कर रहे हैं कि भगवान की पत्नी है, प्रेयसी है, परम पूज्या है। श्रृंगार के भाव से वर्णन नहीं कर रहे हैं। सुचिस्मिता, सब काम ठीक से हो गया था, भगवान आ चुके हैं, इसलिए ये सब सोच करके रुक्मिणी जी के मुख पर बहुत सुंदर मुस्कान है। सुचिस्मिता, बिंब फला धर द्युति सोणाय मानो द्विजकुंद कुडमला। और रुक्मिणी जी के ओष्ठ, ऊपर का ओठ या नीचे का अधर, ये दोनों बिंब फल की तरह लाल लाल थे, और इस कारण से लालिमा रिफ्लेक्ट होकर के उनके दांतों को ऐसा थोड़ा थोड़ा लाल लाल कर रहे थे। दांत भी लाल लाल थोड़ा थोड़ा दिखाई देते थे ओठों के कारण। और इस तरह कमल कोश के समान परम सुंदर मुख था। बिंब फला धर दिति सोणाय मानो द्विज कुंद कुडमला। और दंत पंक्तियां कैसी थी, कुंद कली के समान। पदा चलंतिम कलहंस गामिनी, पैर से चल रही थी, तो पैर से चल रही थी तो पैरों में पायजेब नुपुर कैसा लग रहा था, जैसे लगता था कि कलहंस गा रहा, कलहंस गामिनी नहीं, जैसे कलहंस राजहंस चलता है इस तरह से लग रही थी। जब हंस चलता है मस्त गति से पानी के ऊपर अथवा जमीन पर भी, तो वो मस्त चाल से चलता है और कुछ कुछ बोलता है, तो इस तरह से रुक्मिणी जी के चरण शब्दायमान थे, नुपुर बोल रहे थे। सिंजत कला नुपुर धाम शोभिनान, सिंजन करते हुए, कोणन करते हुए नूपुर के से बहुत सुंदर लग रहा था चरण। तो ऐसे रुक्मिणी जी को देखा वीरों ने, विलोक्य वीरा मुमुहु समागता जसस्विन तत् कृत हृच्छयार्दिता याम विच्छते नृपतयस्तदुदार स व्रीडावलोक हृत चेतस उज्जितास्त्र। अच्छा श्लोक कभी कभी संख्या भिन्न भिन्न हो जाती। जितने भी वहां पर वीर आए थे, राजागण सैनिक सब, जो बहुत यशस्वी थे, यशस्वी का अर्थ होता है जो जितेंद्रिय थे और बड़े वीर थे, फिर भी रुक्मिणी जी को देखते ही उनके मन में हृच्छय जग गया। सबके मन में रुक्मिणी को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, काम जग गया मन में। रुक्मिणी जी को देख करके वे राजागण हृत चेतस, रुक्मिणी जी के लज्जा भरी मुस्कान को देख करके, मुख को देख करके वे सब, उन सबका चित्त हर लिया गया, उनकी चेतना चली गई और उज्जित अस्त्र, उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे सब नीचे गिर पड़े। उज्जित का तो उझील लेना, उज्जित अस्त्र, जिनके हाथ में जो भी अस्त्र थे, जैसे किसी के हाथ में धनुष था, किसी के हाथ में मुदगर था, तलवार था, लाठी था, जो कुछ भी था सब गिर गया। अब जब चेतना रही ही नहीं, वे बेहोश जैसे हो गए देख करके, तो इसीलिए हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़ने की शक्ति नहीं रही। तो युद्ध क्या करेंगे, रुक्मिणी जी ने स्वयं ही उनको निरस्त कर दिया। उनके सौंदर्य को देख करके सब लट्टू हो गए, हाथ से गिर पड़े अस्त्र। अस्त्र तो गिर ही पड़े हाथ से, वे स्वयं भी तेतु छितऊ गज रथा स्वगता विमुद्धा यात्रा छले न हरे प्रतिम सुशोभा। पेतु छितव, कुछ राजा लोग जो घोड़े पर सवार थे, हाथी पर थे, वे सब पृथ्वी पर गिर पड़े। अब चेतना नहीं रही तो कैसे संभाल सकता है शरीर, इतना मादक सौंदर्य है रुक्मिणी जी का, देखते ही सब गिर गए। यद्यपि जो भक्त होते हैं उनका भाव दूसरा होता है, जैसे मोहिनी अवतार में भगवान को देखा देवताओं ने, तो देवताओं के मन में यही हो रहा था कि हमारी माँ है, हमें अमृत पिलाएगी, यही भाव हो रहा था। उनके मन में नहीं भाव हो रहा था कि हम इसे विवाह करेंगे, या प्रस्ताव डालने लगे कहाँ की हो, हम ऐसा सोचते हैं तुम्हारा विवाह अभी नहीं हुआ इसलिए हम बात कर रहे हैं। असुर लोग ऐसे बोलने लगे, यदि हम लोगों को पता हो जाता कि तुम विवाहिता हो तो राम राम हम कभी बात नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे स्वभाव से या तुम्हारे सिर में कुमकुम नहीं है या नहीं है तो हम जानते हैं कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। तुरंत बस विवाह की बात करने लगे, तुरंत जब ही भेंट हुई बस विवाह की बात करने लगे। रास्ता चलने वाली स्त्री वो आ रही थी, कोई परिचय नहीं है कि किस शहर की है, किस गांव की है, किस जाति की है, किस समाज की है, बस सीधे विवाह की बात। ये असुरों का स्वभाव सीधे यही बात करनी, परंतु देवता लोग उनकी शरण में हुए, यही समझ रहे थे कि माँ है, और भगवान ने बड़े स्नेह से अपने भक्तों को अमृत पिलाया, और जो लोग विवाह करना चाहते थे उससे उन लोगों को तो विवाह तो दूर की बात, एक बूंद अमृत भी नहीं पिया। भाव का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर जिन राजाओं की बात कही जा रही है वे सब इस तरह से रुक्मिणी जी को देख करके काम से ग्रस्त हो गए, उस दशा में उनकी चेतना लुप्त जैसी हो गई और अस्त्र को पकड़ने की शक्ति नहीं रह सके, घोड़े के पीठ पर बैठ नहीं सकते थे, गिर गए, लड़ेंगे क्या। पेतु छितव, छितव का छिति पर पेतु गिर गए। पेतु छित गज रथास्व गता। गज पर कुछ लोग थे, कुछ लोग रथ पर थे, कुछ लोग अश्व पर थे, घोड़े पर थे, वे सब गिर पड़े। अथवा कुछ लोग रथ पर गिरे होंगे तो रथ पर ही ऊपर छितऊ का अर्थ है कि रथ के ऊपर ही गिर गए बेहोश होकर। कुछ लोग घोड़े पर गिरे, लेकिन छितऊ शब्द यह भाव व्यक्त कर रहा है कि वो पृथ्वी पर गिर पड़े। किसी किसी को तो बहुत चोट भी लग गई है गिरने पर, तो बेहोश होकर के गिर रहे हैं इस तरह मदिरा पीने जैसा सब गिर गए। इस प्रकार यात्रा के छल से श्री रुक्मिणी जी अपनी शोभा को भगवान पर अर्पित कर रही थी, अर्थात वे स्वयं ही दिखाना चाहती थी कृष्ण हमको देखें, अपनी शोभा को भगवान के लिए अर्पित कर रही थी। इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी यह कहना चाहते हैं कि रुक्मिणी जी के मन में एक क्षण भी यह विचार नहीं आया कि और लोग हमको देखें, नहीं आया। उनके मन में केवल यही भावना थी कि श्री कृष्ण हमको देखे। और लोगों ने देखा और देखने की वो प्रतिक्रिया हुई कि वे लोग गिर गए, लेकिन रुक्मिणी जी वास्तव में अपने को भगवान को दिखाना चाहती थी। सैवम समय चलती चलपद्म कोश प्राप्ति तदा भगवत प्रसमित क्षमारा। तो इस प्रकार पद्म कोश के समान कोमल चरणों से वे चल रही थी और समय धीरे धीरे चल रही थी। अब उनको घर नहीं जाना था, घर से चलते समय जब देवी के भवन में आना हुआ तो थोड़ा तेज रफ्तार से चल रही थी, और इधर से लौटना हुआ तो अब तो वो देख रही थी श्री कृष्ण को। तो भगवत प्राप्ति प्रसमित क्षमारा, ये भगवान की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, कृष्ण किधर हैं, कहाँ खड़े हैं, रथ कितनी दूर पर है, क्या है, तो इसके लिए धीरे धीरे चल रही थी। जल्दी जल्दी चलने में हो सकता था कि घर आ जाता और कृष्ण को नहीं देख पाती, तो धीरे धीरे चल रही थी। और प्रसम इक्षमाणा, प्रकर्षण सम्यक इक्षमाणा, खूब ध्यान से देख रही थी। दोनों तरफ कतार में राजा लोग खड़े थे, सब तो सबके बीच में देख रहे थे श्री कृष्ण कहाँ है कहाँ है कहाँ है। यद्यपि रुक्मिणी जी को इस दशा में सब लोग देख रहे थे, पर रुक्मिणी जी का आशय नहीं था कि हमको लोग देखे, श्री कृष्ण हमको देख लें और मैं उनको देखूं, बस इसके लिए विकल्प थे। उत्सार जो वाम कर जय रलका न पांगे प्राप्तन हृदय क्षत निपान ददसे चितम सा। अंत में अपने वाम करज ही करज, जो कर में जन्म ले उसको करज कहते हैं, नख को करज कहा जाता है। अपने नखों से, अपने अंगुलियों के अंतिम भाग से अपने अलक को हटा करके, जो अलक आंखों पर ऐसे आ रहे थे उनको ऐसे हटाया, और हटा करके बिल्कुल निर्लज भाव से साफ देखने लगी किधर है कृष्ण। तो देखी राजाओं की पंक्ति दिखाई दे रहे थे और उनके बीच में भगवान दिखाई दिए। प्राप्तन हृदय क्षत्र निपान ददसे चितम सा, यदि वो राजाओं को देख रही थी तो उन्हें लज्जा का अनुभव हो रहा था, लेकिन देखते देखते उन्होंने अच्युत को देखा। अच्युत को देखते ही वह तत्काल अच्युत की तरफ चल दी, और जो प्रसिद्ध पथ था घर जाने का सखियों के साथ, तो वो सीधे चल दी। तो जो उनकी सखियां चल रही थी और ब्राह्मणों की पत्नी, जैसा आपने पहले सुना, ये सब तो चाहते ही थे कि कृष्ण के साथ हो जाए, ये सबकी इच्छा थी। इसलिए रुक्मिणी जी के जाने में, कृष्ण के निकट जाने में किसी ने पूछा नहीं कहाँ जा रही हो, ये रास्ता छोड़ करके कहाँ जा रही हो, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि सहयोग जैसा किया, रुक्मिणी जी चली। कामराज कन्याम रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो दिशताम समिच्छताम। तो वह राज कन्या रथम आरुरुक्षतीं, रथ के निकट चली गई और जाकर के रथ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी भगवान देखे कि वो रथ पर चढ़ना चाहते हैं, आरुरुक्षति आरोहण रथ पर आरोहण करना चाहती थी, तो द्विषताम समीक्षताम द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि के सामने, जरासंध आदि के सामने भगवान रुक्मिणी का बांह पकड़े और रथ पर चढ़ा लिए और इसके बाद रथ चल दिया। समीक्षताम वो सब देख रहे थे, सम्यक इच्छता इसका अर्थ है कि रुक्मिणी जी को देख करके कुछ लोग जो बेहोश हो गए थे गिर गए थे, बाद में सब सावधान हो गए, हथियार ले लिए थे और देख रहे थे कृष्ण को। समीक्षताम समीक्षताम सम्यक देख रहे थे कि कृष्ण के पास रुक्मिणी जा रही है, रथ पर चढ़ना चाहती है और कृष्ण ने उसका पानी ग्रहण किए, पानी पकड़ कर हाथ पकड़ करके रथ पर बैठा कर और चल दी, ये सब देखे। समीक्षताम का अर्थ है कि सम्यक देख रहे थे। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव, तो रथ पर भगवान समारोप्य सम्यक आरोपित किए, रुक्मिणी जी को बैठा लिया अपने बाएं भाग में, उस रथ पर गरुण जी का चिन्ह था, गरुण ध्वज भगवान राजाओं के उस समूह को परिभूत करके अभिभूत करके उनको हीन साबित करके और सबके सामने लेकर के चल दे रुक्मिणी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ततो जयो राम पुरो गमहि शनैः श्रीगाल मध्या दिव भाग हृद्धरी। श्री सुखदेव वो समय कहते हैं कि इसके बाद भगवान तुरंत ही आगे बढ़े, वहां श्री बलराम जी थे और भी जादव थे उनके साथ वे चले गए। उस तरह से श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर लिए जैसे सियारों के मध्य से सिंह अपना भाग लेकर के चला जाए, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान रुक्मिणी जी का हरण कैसे किए, जैसे सिंह है हजारों सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, उसको क्या डर होता। जब सिंह कहीं जाएगा और मान लीजिए सियार भरे पड़े हैं तो दूर जाकर के हुआ हुआ करें, वो निकट नहीं आ सकते हैं। और भगवान के वहां से चले आने पर रुक्मिणी का हरण करके जब चले आए तो उस समय धरो धरो पकड़ो पकड़ो कहाँ गया क्या हुआ बोलो हुआ हुआ करने लगे, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सब सियार बोलना चालू किए। लेकिन सियारों के बोलने से सिंह तेज नहीं भागता है, वो मस्त चाल से चलता है। भगवान जो रुक्मिणी जी को रथ पर बैठाए तो ऐसा नहीं कि रथ को बहुत तेज गति से भगाए हो, एकदम मध्य गति से चल रहे थे शांत। ऐसा नहीं था कि भगवान को डर था कि अब लोग पीछा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत दे रहे हैं कि सियारों के मध्य से बीच से श्रीगाल मध्या श्रीगालों के मध्य से जैसे सिंह अपना भाग कुछ ले जाए, उस तरह से श्री कृष्ण उन राजाओं के बीच से रुक्मिणी जी को उठा कर ले गए। और जैसे हरण करता है सिंह है तो उसमें कोई व्यग्रता नहीं होती है, और इसके बाद ऐसा नहीं कि लेकर के भागे कि ऐसे यार हमको पीछा करें क्या करेंगे, वो वाह ही नहीं सकते हैं निकट, इस तरह से मस्ती के साथ चले वहां भागे नहीं। एक टीकाकार कहते हैं कि सियार से ही उपमा क्यों दिए राजाओं की, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सिंह कहीं निकलता है अपने मांद से और अपना शिकार प्राप्त करता है, किसी पशु का वध करता है तो कुछ खाता है या मार करके तुरंत उसको ले जाता है खाने के लिए, तो सियार दूर दूर रहते हैं वे हुआ हुआ करते हैं, सूचना देते हैं कि ये सिंह निकला है और अपना शिकार ढूंढ रहा है, वो लोग हल्ला कर देते हैं तो दूसरे पशु सावधान हो जाते हैं, सियारों का यह स्वभाव है। तो यहां पर ये तो पहले तो शांत थे सब, लेकिन श्री कृष्ण जब रुक्मिणी को लेकर के चले तब अरे मैंने देखा नहीं ध्यान नहीं दिया तुम कहां थे ये क्या हो गया ऐसा हुआ हाँ 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 सब करने लगे बोलने लगे बहुत प्रकार से, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सियारों के मध्य से जैसे सिंह ले जाए वैसे, जो बोलना नहीं छोड़, राजा लोग बोल रहे थे तो लोग क्या कहते हैं, तम्मानिनम स्वाभिभवं जसक्षयम त्वरे जरासंध वसा न से हिरे। जरासंध के वश में रहने वाले वे सब राजा लोग अपने इस पराभव को, अपने इस पराजय को सह नहीं पाए, क्योंकि अपने को बहुत बड़ा व्यक्ति मानते थे लोग। तो क्या कह रहे थे, उनके वचन का मुख्य भाव यहाँ सुखदेव गोस्वामी दे रहे, अहो धिगस्मान जसयात धन्वनाम गोपैर हृतम के सरिणा मृग रिवा। अहो धिगस्मान, हम लोगों को धिक्कार है, हम लोगों को धिक्कार है कि हम सब यहाँ थे और धनुष बाण लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं और जसस्वी है, हमारे जस को इन गोपों ने छीन लिया। भला बताओ, ये गाय चराने वाले कभी इस तरह से राजाओं को परास्त कर सकते हैं? लेकिन आज तो ये हालत है कि जैसे कुछ हरिण मिल करके और सिंहों को परास्त कर दे, इस तरह से कृष्ण बलराम आदि हरिण आ करके और हम लोगों को ये परास्त कर दे। क्या कहा जाए, दैव समय बलवान, नहीं तो ये गोप आ करके और राजाओं को परास्त करके ले जाए कन्या को, ये कैसे हो सकता था? ये तो वैसे घटना घट गई जैसे कुछ हिरण मिल करके और आ करके सिंहों को परास्त करते, और वो भी सिंह लाखों की संख्या में, ये भी बात। सब तो अपने टाइटल में सिंह ही लिखते होंगे, शिशुपाल सिंह, जरासंध सिंह, सिंह लिखते लिखते समझते हैं कि हम सिंह ही हैं। सालो सिंह, दंतवक्त्र सिंह, विदुरक सिंह, इतने सिंह भरे पड़े हैं और ये एक हरिण आया और लेकर के चला गया। तो लोग कह रहे थे सब हम लोगों के असावधानी का फल है। अब मान लीजिए सिंह, हजारों सिंह हों और सो गए हों, तो हरिण आकर के कुछ करके जा सकता है? जो सो गए हो तो ये कहते थे अरे मेरा ध्यान नहीं था, तुम कहाँ थे, थोड़ा मैं और सोच रहा था, अगर मुझे उस समय पता होता तो मैं कृष्ण को बता दिया होता, ऐसे हुआ, बस तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलो चलो चलो, कितना दूर जाएगा, कहाँ जाएगा, इस तरह से बोल रहे थे। धिक्कार है हम लोगों को, हम लोग आप धनवना धनुष लिए थे, बाण लिए थे, सब तैयार थे, लेकिन हमारे जस पर पानी फेर दिया इन गोपों ने। जब जब कृष्ण की निंदा करनी होती थी तो ये राजा लोग कृष्ण को गोप कहते थे, जादव नहीं कहते थे। ये भागवत में सब जगह देखा जाता है। जब राजसीय सभा में महाराज युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की भगवान की, अग्र पूजा के पहले जब प्रस्ताव दिया गया, कृष्ण सबसे पूज्य हैं और इनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी, अतः इनकी पूजा होनी चाहिए, तो वहां पर यही शिशुपाल बोलना चालू किया, कि मैं यह मानता हूं कि काल बहुत बलवान है और इस सभा में आने वाले सबके मति को नष्ट कर दिया है काल, मतलब यहाँ कोई भी बुद्धिमान नहीं है। वो बोलना चालू किया, उधर युधिष्ठिर महाराज अनुमोदन कर रहे थे, भीष्म पितामह अनुमोदन कर रहे थे, सहदेव जी ने कहा कि भगवान की पूजा होनी चाहिए, सब लोग स्वीकार कर लिए। महाभारत में बड़े विस्तार से लिखा गया है, जब शांत हो गई बात और पूजा होने के लिए तैयारी हुई कि ठीक है श्री कृष्ण का आदर किया जाए, पूजा की जाए, तो शिशुपाल हाथ ऊपर किया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग जानते थे कि ये तो विरोधी है कृष्ण का, लेकिन फिर भी आओ जबरदस्ती बोलने लगा, माइक पकड़ लिया होगा और वो बोलने लगा बोलने लगा। सबसे पहले यही कहता है कि काल बहुत बलवान है, यह बिल्कुल सत्य वाक्य है। क्या काल कर दिया? काल यह कर दिया कि इस सभा में बैठे हुए सबके दिमाग को चौपट कर दिया काल। या इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए और इन सबके सामने एक गोप की पूजा की बात आ रही है और सब ताली बजाकर अनुमोदन कर रहे हैं। अच्छी अच्छी धिक्कार, ये पूजा करने लायक है, गाय चराया है ना, ये कभी युद्ध किया है, बैल मारा है, गधा मारा है, यही तो ये काम किया है, बछड़ा मारा है, सारा महाभारत में लिखा गया है। अरिष्टासुर बैल बन करके गया था तो उसको कह रहा है ये बैल मारा है, और धेनुकासुर गधा बन करके गया था तो उसको मारा, गधा मारा है। ये खेल खेलने वाला, गोपियों के घर में चोरी करने वाला, ये गोप कैसे पूज्य हो जाएगा? भीष्म पितामह अनुमोदन किए थे तो भीष्म पितामह को कहता है ये 400 वर्ष का बूढ़ा है, इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया, ये बनता है ब्रह्मचारी, ये काशी नरेश की कन्या का क्यों अपहरण किया था, ब्रह्मचारी हो ना। अब तो भीष्म पितामह चुपचाप बैठे हैं, अब क्या करें, सबको गाली दे रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसी की पूजा करनी चाहिए, ये योग्य है, कृष्ण योग्य नहीं है, अगर पूजा करनी है तो भीष्म की पूजा करो, यहाँ नारद जी बैठे हैं इनकी पूजा हो सकती है और किसी की भी पूजा हो सकती है, लेकिन इस नालायक की पूजा करना ही बेवकूफी है, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। यही व्यक्ति है कि हमारी पत्नी का अपहरण किया, मेरा विवाह निश्चित हुआ था, मैं वहां गया था और फिर भी इसकी देखी आज रुक्मिणी का हरण किया, इस तरह से यह है, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से शिशुपाल बोला था। मैं किस बात पर ये बात कहने लगा लिंक भूल गया है, हाँ गोप, तो बार बार गोप शब्द का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जादू कहने पर तो क्षत्रिय बोध होगा, तो गोप जब भी निंदा की बात आती है, अरे गोप ऐसा किया ऐसा किया, बाद में जादू है तो यहाँ पर वो कह रहे गोप ही, गोपों ने, गोप का अर्थ गाय चराने, गाय बकरी चराने वाले आकर के राजाओं को ऐसे हरा दिए, धिक्कार है, क्या कहा जाए, अरे मैं तो सावधान नहीं था, तुम क्या कर रहे थे, क्या मर गए थे, तुमको सावधान रहकर बाण चलाना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, इस तरह से बोल रहे थे। इति सर्वेषु संरब्धा बाहानारुह्य दंशिता स्वैश्वै बलह परिक्रांता अन्युर्धृत कर्म कहा। इस तरह से सब बड़े क्रोध में हो गए, असहनशीलता में आ गए और अपने अपने वाहनों पर चढ़े, दंशिता कवच बांध करके, जो पहले गिर गए थे तो फिर अपने वाहनों पर चढ़े और कवच बांध लिए, सब अस्त्र ले लिए, सब अपनी अपनी सेना के साथ पीछा किए कृष्ण का लड़ने के लिए चले। अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदा, उसके पहले श्लोक है, ताना पतत आलोक्य जादवा नीक जुर्थपहा तस्थु तत्सम्मुखा राजन विस्फुर्ज्य स्वधनुंसिते। तो जादव जो बलराम जी की अध्यक्षता में थे, बलराम आदि जादव जो थोड़ी ही दूर पर खड़े थे व्यूह बना करके, तो उन लोगों ने देखा तान आपतत, ये राजा लोग बड़े वेग से कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको देख करके जादव सेनापतिगण तस्थु रुक गए, जो पहले कृष्ण के साथ जा रहे थे धीरे धीरे वे सब रुक गए इनकी आवाज सुनकर। वो लोग बहुत गाली दे करके पीछा कर दे, अरे दुष्टो ठहरो ठहरो, रे रे तुकार कर रहे थे तो ये लोग ठहर गए और इसके बाद अपने धनुष की टंकार करने लगे। अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदा मुमुचु सर्ष वर्षाणी मेघा अदृश्य पोज था। तो शिशुपाल के पक्ष के जितने भी राजा थे, कोई घोड़े के पीठ पर था, कोई गज के स्कंध पर था और कोई रथ के उपस्थ पर था, अर्थात कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, च से कुछ पैदल, ये लोग शस्त्रों की वर्षा करने लगे, बाणों की वर्षा करने लगे। वर्षा से तात्पर्य निरंतर धारावाहिक जादुओं पर वर्षा करने लगे, लेकिन इनके बाण वर्षा का वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी वैसे जैसे लगता था कि पर्वत पर वर्षा हो रही है। तो पर्वत पर वर्षा होने से पर्वत का क्या बिगड़ेगा? जब वर्षा बहुत होती है तो उससे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जादुओं की सेना पर्वत के समान अचल थी, अर्थात वे लोग इधर उधर भाग नहीं रहे थे, डटे हुए थे, और उनको देखते ही ये राजा लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे, बाणों की वर्षा करने लगे। अदृश्य अपोहज था, ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत पर पानी बरस रहा है। इस दृष्टांत से सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि जादव बिल्कुल अचल थे और उन पर इनके बाण वर्षा का कोई असर नहीं हो रहा था। पत्र बलम सर आशा रही छन्नम विक्ष मध्यमा सदृढ़मय तद वक्रम भय बिहवल लोचना। श्री रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति की सेना, श्री कृष्ण की सेना जो थोड़ी थी वास्तव में, ये लोग तो बहुत थे, लेकिन जादुओं की सेना थोड़ी सी थी, पर थे सब उच्च कोटि के योद्धा, सेनापति सब आए थे। तो रुक्मिणी जी ने देखा कि सराशारे ही बाणों की वर्षा से उनके पति की सेना घिर गई है, तो रुक्मिणी जी भय से बिह्वल हो गए, उनके लोचन, उनके नेत्र घबरा रहे थे, वो भगवान पर देखने लगे करुण दृष्टि से, ये तो सब बाणों से घिर गए, शस्त्र वर्षा से सेना, अपनी सेना घिर गई है, वो डर गई और डर करके श्री कृष्ण के मुख पर देखने लगे। तो भगवान हंस करके कहे, प्रहस्य भगवान मास्म भैरवाम लोचन, हे सुंदर नेत्र तुम्हें भय मत करो, चिंता मत करो, विनश्यं तधुन वे तत्तावक शत्रुवं बलम, अभी अभी शत्रुओं की सेना को तुम्हारी सेना नष्ट कर देगी, तुम्हारे मतलब मेरी, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, अभी तुरंत ही हम जादुओं की सेना उनके सेना को नष्ट कर देगी। तेषां तद विक्रमं वीरा गद संकर्षणादयः अमृष्यमाणा नाराचैर जघनुर है गजान रथान। तो जब शिशुपाल के पक्ष के वीर ललकार रहे थे और अस्त्र की वर्षा किए, तो इसको गद संकर्षण आदि सह नहीं सके। गद भगवान के छोटे भाई हैं और संकर्षण बड़े भाई हैं, बलराम जी, ये दो को मुख्य यहाँ कहा जा रहा है। ये सब जादव आए थे, ये सह नहीं सके इनकी ललकार को और बाण वर्षा को, तो ये लोग अपने धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा करके और हाय गजान रथान, रथों को, हाथियों को, घोड़ों को मारने लगे, अर्थात उन पर सवार लोगों को मारने लगे। ते तु सिरांसी रथी नाम अश्वी नाम गजी नाम भूवि, जो रथ पर चढ़े थे या घोड़े पर चढ़े थे या हाथी पर चढ़े थे, सबके सिर कट कट कर नीचे गिरने लगे, सह नहीं सके। और इन वीरों ने ऐसा बाण मारा कि तत्काल एक एक आघात में बस सिर कट करके गिरने लगे। वे लोग जब प्रहार किए थे सब मिल करके, तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि पर्वत पर पानी बरस रहा है, बस इतना ही हुआ। पर्वत पर पानी बरसेगा तो उसे पर्वत को दुख नहीं होता है, बल्कि और गंदगी धुल जाती है, साफ हो जाता है, उसे क्षति कुछ नहीं होती है। जादुओं का कुछ नुकसान नहीं हुआ, उनका चमड़ा तक नहीं छिला, कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये भगवान की सेना बाण चलाने लगी तो उनके सिर गिरने लगे। तेतु सिरांसी रथी नाम अश्वी नाम गजी नाम भूई सकुंडल किरीटानी शोषणानी चकोटी सब, कोटि कोटि सिर गिरने लगे, कैसे कुंडल के साथ सिर गिरता था तो कुंडल भी कान में झूलता हुआ गिरता था और पगड़ी भी साथ में, कोटि सब हस्ता सासी गदेश्वास, हाथ कट कर गिरते थे, हाथ में धनुष पकड़े पकड़े या तलवार पकड़े पकड़े हाथी की सूंड के समान जांघे कट करके गिर रहे थे। अश्व अश्व तरनागोष्ठ खर मत सिरांसी चा, घोड़े मारे जा रहे थे, गधे मारे जा रहे थे, उन पर चढ़े हुए मनुष्य सब मारे जा रहे थे। हन्यमान बलानी का विष्णुवीर जय कांस्य भी, विजय की आकांक्षा वाले या उत्साह में रहने वाले जादुओं के द्वारा जब इस प्रकार से युद्ध हुआ तो जो बचे हुए राजा थे वे सब युद्ध छोड़कर भाग चले, और जो मरे वो तो मरे, और भागने वाले में जरासंध पहला था, मतलब उसी की अध्यक्षता में सब थे। जब वो भागा तो और सब राजा भाग गए। अरे बाप रे बाप, अब हरिणों से पाला पड़ा है। तो अपने को सिंह कह रहे थे। राजा नो विमुखा जगमुर जरासंध पुरह सरा, ये राजा लोग सब विमुख हो गए, युद्ध से पीठ दिखा करके भाग चले। जान बची तो लाखों पाए, अब ये सोचे कि बस बस जस की कामना नहीं करना है, बस जीवित रहे किसी तरह से, चाहे दुनिया थूके चाहे कुछ भी करे, लेकिन जीवित तो रहेंगे ना। लोग भाग चले। जरासंध अध्यक्ष था, उसने कहा कि भागो भागो, अब तो सब भाग चले, वो भी भाग गए। भाग गए, बहुत लोग तो मर गए उस युद्ध में, जो बचे थे वे आए, जरासंध भी बचा था और लोग बचे थे। शिशुपाल युद्ध में भाग नहीं लिया था, वो बेचारा दुल्हा वेश में था तो अभी टेंट में बैठा था, वो तो बहुत उदास था, बहुत खिन्न था, उसकी क्या हालत हो रही होगी बताइए, कई वर्षों से विवाह निश्चित करके, और विवाह हुआ भी तो दूसरा उस कन्या को ले गया और उसका शत्रु, इस कारण से वो बहुत दुखी था। ये सब राजा लोग शिशुपाल के पास पहुंचे सांत्वना देने के लिए। शिशुपालम समभ्यत्य हृतदारम इवातिरम नष्टत्विषम गतोत्साहम सुस्यत बदनम अब्रुवन। राजा लोग गए, जिसमें मुख्य था जरासंध, तो लोग गए तो देखे कि जरासंध इस मूड में है कि लगता है कि उसकी पत्नी चली गई, अभी विवाह हुआ नहीं था। हृतदारम इवा, वो यही मानता था कि हमारी पत्नी चली गई, तो विवाह के बाद अगर गई होती तब मानना ठीक भी था, इस तरह से मानना उचित नहीं था। लेकिन हृतदारम इवा आतुरम, वो बहुत आतुर था, व्याकुल था, नष्ट त्विषम उसका तेज नष्ट हो गया था और मन का उत्साह भी नष्ट हो गया था, चेहरा तो फीका हो ही गया था, अब मन में बहुत भारी हतोत्साह छा गया था। और सुष्यत बदनम अब्रुवन, उसका मुख सूख गया था, ऐसे शिशुपाल से राजा लोग कहने लगे, मुख्य जरासंध था, जो लोग कहते हैं भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्य निदम त्यज, हे पुरुष शार्दूल, हे पुरुष सिंह, हे पुरुषों में सिंह अथवा सर्वश्रेष्ठ पुरुष, दौर्मनस्य निदम त्यज, ये मन की चिंता को छोड़िए, इतना उदास नहीं होना चाहिए, इतने क्यों उदास होते हैं, संसार में सब होता रहता है, कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य जो मन में सोचे पूरा हो ही जाए, आप ये खिन्नता त्यागिए, उदास मत होइए, चिंता मत कीजिए, चिंता छोड़िए। जो मुंह लटका करके बैठा था तो पहले उसको अपने सम्मुख करने के लिए, सावधान करने के लिए कहते हैं भो भो, हे हे, हे पुरुष सिंह है, आप मन की चिंता छोड़िए, शोक त्याग दीजिए, एकदम शोक मत कीजिए। न प्रिय प्रिय राजन निष्ठा देही सुदृश्यत, क्यों चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए देही सु, जो इस संसार में देह धारण किया है, तो देह धारण किया है यह एक दंड है, तो देह धारण किया है तो कब उसका प्रिय होगा और कब अप्रिय हो जाएगा कोई ठीक नहीं। जीव जो चाहता है वो नहीं मिलेगा, नहीं चाहता है वो मिलेगा, कभी पराजय हो जाए कभी जय हो, कुछ भी हो सकता है,
इसकी कोई निष्ठा नहीं है कि अब जो प्रिय है वही होगा। अब तक आप इस विचार में थे कि आपका विवाह होने वाला है, आप बहुत खुश थे, नाच तमाशा हो रहा था, बहुत प्रसन्न थे, उस समय आपका प्रिय हो रहा था, लेकिन तत्काल तब तक अप्रिय हो गया। तो प्रिय ही हो ये कोई ठीक नहीं है, या हमेशा अप्रिय ही हो ये भी कोई ठीक नहीं। तो जैसी स्थिति हो वैसा सहना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। जथा दारुमयी जोषित नृत्यते कुहकेच्छया एवं ईश्वर तंत्रोयम इहते सुख दुखयो। जैसे कठपुतली होती है, ये पपेट्स देखते हैं, तो कठपुतली अपनी इच्छा से नहीं नाचती है, गाती है, या दो कठपुतलियां मिलती हैं आपस में, अपनी इच्छा से नहीं, वो सूत्रधार होता है, सूत्र को जैसे जैसे चालित करता है वैसे वैसे मिलती हैं, खंडन करती हैं या झगड़ा करती हैं कठपुतली। तो कठपुतलियां स्वतंत्र नहीं है, नचाने वाले की इच्छा के अनुसार वो आपस में मिलती है, बिछुड़ जाती है, तो प्रिय होता है, प्रिय होता है। इसी तरह से हे राजन, हे शिशुपाल जी, यह सारा जगत ईश्वर के अधीन है। इन मूर्खों को यह पता नहीं कि वही ईश्वर रुक्मिणी को ले गया, ये पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि सारा जगत ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जो चाहता है वही हुआ, ईश्वर नहीं चाहता था कि रुक्मिणी आपकी पत्नी बने, तो उसके लिए चिंता क्या करना है। ईश्वर लिखा रहता किसका किसका किसके साथ विवाह होगा। वास्तविकता यह है कि रुक्मिणी का विवाह आपके साथ ईश्वर ने लिखा नहीं था, सब मिला करके ये बात, नहीं तो हम लोग इतनी सेना लेकर के आए थे आपका विवाह कराने के लिए, कितना उपाय किए सब किए, लेकिन जब लिखा ही नहीं था तो क्या होगा, ईश्वर नहीं चाहता था। ये सारा जगत ईश्वर के अधीन है, वे लोग भी अपने को आस्तिक ही समझते थे। इस संसार में हम लोग इस समय भी देखते हैं कई धर्म के ग्रुप हैं और सब यही समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा ईश्वर को समझे हैं। क्या समझे हैं कि ईश्वर को नाक नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है। और यही यदि हम लोगों की इच्छा के अनुसार होता तो हमने क्या बाकी छोड़ा, क्या आपका विवाह कराने के लिए, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन ईश्वर बलवान है, हम लोग तो बलवान है नहीं, अतः जो कुछ भी हुआ है उसमें ईश्वर की इच्छा पूरी हुई है, इसलिए चिंता छोड़ी। जो दुनिया को बनाया है वो चला रहा है, किसी से किसी को मिला रहा है, किसी से किसी का वियोग करा रहा है, तो उसकी जो मर्जी हो करे, आप बस खाइए पीजिए, छोड़िए चिंता छोड़िए, कुछ पीजिए, लाओ भाई चाय दो इनको चिंता छोड़। एक बार मैं देखा था उदाहरण तो आ जाता है, मैं जा रहा था वृंदावन से दिल्ली, मुझे क्लास देना था अपने मंदिर में दिल्ली, बस वाला चला रहा था बहुत धीरे धीरे, बस चला रहा था, हम लोग बहुत उद्विग्न हो रहे थे क्यों इतना धीरे धीरे चला रहा है, क्लास छूट जाएगा। तो जाते जाते एक गांव पड़ा चौमुहा गांव है वहाँ, और जीटी रोड पर, तो वहाँ गया, देखा एक दुकान खुली है चाय की, तो ड्राइवर रोक दिया और गया चाय पिया। चाय पीने के बाद जो बस चलाना चालू किया तो सब लोग कहते थे इतना मत चलाओ, इतना इतनी ताजगी आ गई चाय की। तो उतरते समय आश्रम में जब मैं उतरा अगले सीट से उधर गया तो मैं कहा ड्राइवर से कि ड्राइवर साहब चाय के बिना इतना धीरे धीरे चला रहे थे, तो हाँ चाय नहीं पीने पर हम ठीक नहीं रहते हैं, और चाय पी लिए तो फिर रोकना पड़ रहा था कि नहीं इतना मत चलाइए, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाए इतना अंतर पड़ा। जो भी हो, जरासंध आदि राजा समझा रहे हैं शिशुपाल को, सत्य बात ही कह रहे हैं कि ईश्वर के अधीन है सारा जगत, एवं ईश्वर तंत्रोयम इहते सुख दुख है, यह जीव ईश्वर के अधीन है, और ईश्वर चाहता है तो सुख मिलता है, और चाहता है तो दुख मिलता है,
अपनी इच्छा से कुछ होता नहीं है इस संसार में। जैसे कठपुतलियां नाचती हैं, गाती हैं, वो कुहक की इच्छा से, नचाने वाले सूत्रधार की इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से नहीं। फिर भी बेचारा शिशुपाल शोक में था, उसका शोक जा नहीं रहा था। तो जरा संध कहता, शौरे सप्तदशाहं वै संजुगानि पराजितः। आप हमारा उदाहरण लीजिए, शौरी से, कृष्ण से मैं सप्तदश 17 बार युद्ध में हराया गया व्यक्ति और प्रत्येक बार 23 औक्षणी से मैं लेकर जाता था। जब जरासंध ने यह सुना कि हमारे दामाद का कंस का वध कर दिया कृष्ण ने और उसकी दोनों बेटियां अस्थि प्राप्ति गई थी राजगीर गृह में और शिकायत की कि कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया, तो जरासंध बहुत कुपित हुआ और वो अपने अधीन रहने वाले राजाओं को चिट्ठी लिख करके कहा कि इतनी सेना तुम भेजो, इतनी सेना तुम भेजो, इतनी सेना तुम भेजो। 23 औक्षणी सेना लेकर साल भर के बाद मथुरा पर चढ़ाई किया, आक्रमण की, घेर लिया मथुरा के चारों तरफ से। उसके उस विशाल सेना को देख करके मथुरा की स्त्रियां रोने लगी, छतों पर चढ़कर देखी कि अरे तो विशाल सेना आ गई। परंतु कृष्ण बलराम निकले युद्ध में और भगवान की इच्छा से सब रथ आ गया, आयुध मुसल बलराम जी का, भगवान का चक्र वगैरह सब आ गया, केवल दोनों भाई लड़ रहे थे। उस विशाल सेना के साथ जो लड़े सबको वहीं नष्ट कर दिए, कोई लौट कर नहीं गया, जद गत्वा न निवर्तन तो मथुरा में ही सब रह गए तीर्थ शरीर से। इसके बाद श्री बलराम जी पकड़ लिए जरासंध को, ये भागवत में वर्णन, पहले युद्ध में बलराम जी ने पकड़ लिया। लिखा गया है कि जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ ले वैसे बलराम सिंह जरासंध सिंह को पकड़ ले, चाकर के झपट करके और हल से फंसा कर पकड़ लिया और मारने जा रहे थे। बहुत क्रोध में बलराम जी थे लेकिन भगवान ने छुड़ा दिया, नहीं नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, भगवान दया करने के लिए कहे। तो इससे जरासंध और मर गया कि बात रे बात, कृष्ण की दया से मैं जी रहा हूँ। कृष्ण ने यह भी कहा था कि छोड़ दीजिए मारिए मत, ये हमारे मामा के ससुर हैं, संबंधी हैं, इसलिए मत मारिए। जरासंध तो बिल्कुल मर गया और बाद में भगवान ने बलराम से कहा कि ये जीवित रहेगा तो और लोगों को इकट्ठा करके लाएगा, हम लोग घर बैठे बैठे पृथ्वी का भार दूर कर दें। भगवान ने कहा कहाँ कहाँ खोज कर दुष्टों को मारेगा, ये जीवित रहेगा तो सबको यही लाएगा और यही किया वास्ते। तो जब पहले युद्ध में हार गया जरासंध, तब उसने निश्चय किया कि अब राज्य करना ठीक नहीं है, अब तपस्या करूंगा, हमारी इज्जत चली गई, अब मैं क्या क्षत्रिय रहा। तो वो मन में निश्चय किया, मथुरा से ही निकल गया तपोवन की तरफ, अब वो राजधानी में नहीं लौटने का सोचा, नहीं अब मुंह नहीं दिखाऊंगा, अब जंगल में जा करके बस भगवान का भजन करूंगा। अब हो गया राज्य करना, युद्ध करना हो गया, बाप रे बाप, दो लड़कों ने हमारी शान तोड़ दिया इस तरह से। तो कुछ राजाओं को पता लगा कि जरासंध जी भजन का निश्चय कर चुके, अब राजा नहीं रहेंगे, तपस्वी हो जाएंगे। तो वे लोग रास्ते में भेंट किए इनसे, पता लगा कि किस वन में जाएंगे, वो हिमालय की तरफ जाने का सोचा था। तो राजा लोग जा करके मिलने लगे बीच रास्ते में और कहे अरे महाराज आप ये क्या निर्णय किए हैं, इस तरह का निर्णय ब्राह्मण को करना चाहिए क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय के लिए शोभा की बात है राज्य करना, शासन करना, युद्ध करना, आप चिंता मत कीजिए। और आप जैसा प्रतापी राजा जब वन में जाएगा भजन करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक नहीं है, आपका जो निर्णय है वो ब्राह्मण का निर्णय है, ब्राह्मणों को इस तरह से होना चाहिए, क्षत्रियों को तो ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए, लौटी लौटी हम आपका साथ देंगे। तो फिर नहीं गया तपोवन में, फिर इकट्ठा किया 23 औक्षौणी से ने, और कृष्ण बलराम ठीक उसी तरह से मारे, तो फिर जा रहा था तपोवन में। तो इस तरह 17 बार तपोवन में जाने को सोचता था, और 17 बार 23 औक्षौणी सेना का वध किया भगवान ने। तो वही जरासंध शिशुपाल को अपना आदर्श बता रहा है, अपना प्रमाण बता रहा है कि मैं वही व्यक्ति हूँ, आपने सुना होगा देखा होगा, 17 बार हारा हुआ व्यक्ति कृष्ण के द्वारा युद्ध में। सौरे सप्त दशाहम वही संजुगानी पराजित त्रयोविंशति भी सैन्य जिज्ञ एकम हम परम। 23 औक्षौणी सेना लेकर के जाता था और 17 बार हारा, लेकिन लास्ट में मैं जीत गया, एक युद्ध में मैं जीत गया 18वें युद्ध में। यहां तक कृष्ण मथुरा छोड़कर भाग गया, कहीं समुद्र के किनारे गुजरात चला गया, तो भगा दिया ना। तो मैं तो कभी शोक नहीं करता हूं, 17 बार हारा था लेकिन शोक नहीं किया, फिर मैं युद्ध करता ही रहा। पहली बार के बाद फिर लाया, 17 बार इकट्ठा करके सेना लाना और हार जाना, अरे एक दो बार में ही आदमी पस्त हो जाएगा, लेकिन 17 बार भी साहस नहीं खोया, तो 18वीं बार जीत गया। तो कहता है देखिए कोई ठीक नहीं है, कब किसकी पराजय होगी, कब किसकी जीत होगी। ईश्वर चाहता था कि मेरी पराजय हो 17 बार, लेकिन 18वीं बार ईश्वर ने मुझे विजय दे दिया। इसीलिए तथापि हम न सोचामी न प्रहृष्यामी करहिचित, मैं कभी भी प्रसन्न नहीं हो जाता हूँ, हर्ष में नहीं होता हूँ कि मैं जीत गया, और न तो हारने पर मुझे कभी शोक हुआ, हारने पर मुझे कभी शोक नहीं हुआ, और न जीतने पर प्रसन्न हुआ, मैं हर्षित हुआ। क्योंकि काले न दैव युक्ते न जानन विद्रावितम जगत, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि सारा जगत काल के अधीन है, किसी की इच्छा के अधीन नहीं, हो हमारी इच्छा के अधीन नहीं, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, सारा जगत काल के अधीन है। तो काल आज गोपों को इतना बलवान बना दिया कि वे हम लोगों को भी परास्त कर दिए, जब समय आएगा तो फिर हम लोग परास्त करेंगे, तब तक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रसन्नता से खाइए पीजिए, खेद मत कीजिए। अब आप इतना रोएंगे तो इस बारात में आए हुए औरों की क्या हालत होगी, एक तो ऐसे ही कुछ लोग मर गए लड़कर जादुओं से, मतलब जो बच्चे हैं उनको तो आप घर भेजिए, जाइए खाइए पीजिए आराम से, छोड़िए चिंता। विवाह की बात तो कुछ दिन के लिए छोड़ ही दीजिए, अब कोई दूसरी कन्या आपके भाग्य में लिखी होगी उसके लिए प्रयास कीजिए, जो भी करना हो ये चिंता छोड़िए, रुक्मिणी की तो बात आप छोड़िए। देखा जाएगा, समय आएगा, वैसा इस तरह से सांत्वना दे रहा है, वास्तव में ये बहुत भारी ज्ञानी की तरह सांत्वना दे रहा है। मैं फिर भी नहीं सोचता, अब आज का ही देखिए, अधुना पी वयम सर्वे वीर जुतप जुतपा, अभी ताजा देखिए, वो तो कह रहा है 17 बार 18 बार तो बहुत पहले की बात है, अभी ताजा देखिए अधुना, अधुना का अर्थ अभी अभी, वयम सर्वे वीर जुतप जुतपा, हम लोग तो सेनापतियों के भी सेनापति रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े वीर और सब जुटे थे, आज की ही घटना देखिए ताजी क्या हो गई। पराजिता फल तंत्र जद भी कृष्ण पावित, हम लोग इतने बड़े बड़े वीर आज थोड़े से कम शक्तिशाली जदुवंशियों के द्वारा पराजित हो गए, देखिए ईश्वर का तमाश। हम लोग कभी हारने वाले थे कभी हारे हैं आपने सुना है, लेकिन जादुओं के द्वारा हार गए, ईश्वर की लीला में तो क्या है, इनमें क्या कोई शक्ति, और भी कृष्ण पालित ही, कृष्ण जिनका पालन करे, कृष्ण जैसा डरपोक जिनका लीडर हो, ये किसी को हरा सकते हैं, लेकिन देखिए ईश्वर तो हरा दिया। फिर भी हम तो शोक नहीं करते हैं, हम कभी शोक नहीं करते। रिपवो जिज्ञुरधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयम विजयसमो जदा काल प्रदक्षिण, काल आज हमारे विपरीत है तो शत्रुओं ने हमको पराजित कर दिया, जब काल प्रदक्षिण होगा दाहिने होगा अर्थात अनुकूल होगा तो हम लोग हरा देंगे, तो चलता ही रहता है, इसमें चिंता क्या करनी। तो जब शत्रुओं को हरा देते हैं तो उस समय भी हर्षित नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए कि मैंने हरा दिया, नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर सब करता है, हम लोगों में कोई दम नहीं है, प्रसन्न रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर कब क्या कर देगा, वो चाहे तो मच्छर से सृष्टि करा सकता है और ब्रह्मा को मच्छर से हीन कर सकता है, ये ईश्वर की लीला है। ये लोग केवल युद्ध ही नहीं करते थे, वास्तव में गीता जैसा व्याख्यान भी करते थे। कोई समझा रहे। अज्ञानियों में भी ज्ञान की कम चर्चा नहीं होती है, भगवान का पूरा ज्ञान इनको नहीं था, विद्वेषी थे, लेकिन फिर भी देखिए प्रवचन कितना है। अच्छा, कौन है? पर शोक दूर कर नहीं पाए, प्रवचन करने से क्या होगा। एवं प्रबोधितो मित्रैश्चैद्योगात् सानुगःपुरम् हत्से सा पुनस्तेऽपि जयुः स्वं स्वं पुरं निर्वह। तो इस प्रकार प्रबोधित समझाए जाने पर शोक तो दूर नहीं हुआ, लेकिन चैद्य अपने नगर में लौट आया, शिशुपाल अपने गांव आ गया, और जो भी बचे थे हत्शेषा, मारने से जो बचे हुए थे, जीवित थे, वे लोग भी अपने अपने नगर को चले गए। अब उनकी इष्ट गोष्ठी खत्म हो गई, अब वो कृष्ण के विरुद्ध कोई मीटिंग नहीं कर पाए, भागे सब गांव पर अपने जहां कहा। इसके बाद अब कोई प्लान नहीं चला है, नहीं तो चलता ना कि अब क्या करें, अब कहाँ घेरें, कैसे बदला ले, अब सब खत्म हुआ, इतना हताश हो गए थे, इतनी पिटाई हुई थी और जान से मार दिए गए थे कि सब अपने अपने नगर में भाग गए, कोई किसी से पूछने वाला नहीं था कि आगे क्या होगा, अगली गोष्ठी कब होगी, छोड़ो जाओ अपने काम धंधा देखो सब। जरासंध कह दिया होगा कि अब इस समय बस चुप रहो, काल बिल्कुल विपरीत है, इसमें चर्चा ही मत कर। रुक्मी तु राक्षसोद्वाह कृष्ण द्विट असहंसु पृष्ठ तो न गमत कृष्ण अक्षणियावृतो बलि। सब लोग तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन उनके जाने के पहले रुक्मी क्या किया, इसको सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं। रुक्मी को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि कृष्ण ने उसके बहन का बलात् अपहरण किया, बिल्कुल सह नहीं सका, तो वह कृष्ण के पीछे गया एक औक्षहणी सेना लेकर, कृष्ण का वध करने की इच्छा से। और जाने के पहले वह मूर्ख इस तरह की प्रतिज्ञा किया, रुक्मिमर्षिषु संरब्ध श्रृण्वताम सर्वभू भुजान। जितने राजा अभी वहां थे विद्यमान शुरू में, सभी राजाओं के सामने उनको सुना सुना करके प्रतिज्ञा किया, उसकी विशाल भुजाएं थी, कवच बांध लिया, धनुष बाण लेकर के सभा में शपथ लिया, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह्य च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीमि वः। हे राजाओं, आपके सामने मैं बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कृष्ण को युद्ध में नहीं मारूंगा और रुक्मिणी को नहीं लौटाऊंगा, तो मैं अब इस नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। तो पहले का जो भी फ्लैट था इतना सुखद अच्छा, सब छोड़ छाड़ कर अब नया घर बनाए, पहले इसके मुख से निकल रहा है अहत्वा समरे कृष्णम, कृष्ण को समर में नहीं मारूंगा और बहन रुक्मिणी को नहीं लौटा पाऊंगा, अतः अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा। मत रहो, जंगल में चले जाओ तो क्या कोई करेगा। यही निकल रहा है। अगर यह कहा होता कि मैं कृष्ण का वध करके और रुक्मिणी को लौटा करके तब इस नगर में रहूंगा, ऐसा नहीं निकल रहा है। इसलिए सरस्वती जी उसके जिह्वा पर ऐसे ही शब्द निकाल रहे, अहत्वा समरे कृष्णम, समर में कृष्ण की हत्या नहीं कर पाऊंगा। ये निकल रहा, और रुक्मिणी को नहीं लौटा पाऊंगा, अतः मैं इस नगर में नहीं आऊंगा। यही हुआ वास्तव में, तो प्रतिज्ञा की मूर्खता है बस। प्रतिज्ञा करने में उसका भाव यह था कि मैं कृष्ण का वध करूंगा, रुक्मिणी को लौटाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो आप लोगों के सामने शपथ करता हूं कि अपना गांव ये नगर छोड़ दूंगा, यहां नहीं आऊंगा। स्वयं ही मूर्खता, बस कुछ भी प्रतिज्ञा कर लो तो दूसरा क्या दोषी। ये तो लौटा नहीं पाया रुक्मिणी को, कृष्ण का वध नहीं कर पाया, तो इसको कोई दूसरा नहीं कहा था कि तुम गांव में मत रहो, नगर में मत रहो, अपने आप अगर दूसरा नगर बनवाया, धनी था ही, दूसरा नगर बना करके वहां रहने लगा। तो यह प्रतिज्ञा करके कृष्ण के पीछे चला, यह कह करके रथ पर चढ़ करके सारथी को आज्ञा दिया कि कृष्ण जहां है वहां ले चलो रथ को, और बहुत तेज गति से ले चलो, मैं देखूंगा उसको। अद्य हम निश्चिता बाण, आज मैं तीखे तीखे बाणों से उस गोपाल के जो बहुत दुर्बुद्धि है वीरज मद को नष्ट कर दूंगा, जिसने मेरे बहन का बलात् अपहरण किया, तो उसका मद आज मैं चूर कर दूंगा। इन सबका भी सारस्वत अर्थ है। अद्य अहम निश्चितर बाणेर गोपाल से सुदूर मते निश्चे वीरज मदन जेना स्वसा में प्रसवन। निश्चय का एक अर्थ है बढ़ा देना, आज मैं कृष्ण के वीरज मद को बढ़ा दूंगा। ये सरस्वती जी उसके जिह्वा पर बोल रही हैं, वीरज मद को मैं नष्ट कर दूंगा। कृष्ण में वीरज मद है ही नहीं, उनमें मद है ही नहीं, नष्ट क्या करोगे। इस तरह से प्रतिज्ञा किया, विकत्थमान कुमति ईश्वरस्य प्रमाणवित, इस तरह से बहुत बात बोल रहा था, भगवान की निंदा कर रहा था, और एक ही रथ से चला कृष्ण के पीछे, रथई के में गोविंदम तिष्ठ तिष्ठ था। तो और तो सेना बाद में लिया था, लेकिन अब अकेले चला कृष्ण के पास, और उसकी जो सेना थी वो बलराम आदि से लड़ रही थी, और यह अकेले कृष्ण के पास चला, पीछा किया, बहुत गाली दे रहा था पीछे से कृष्ण को। ये सब हम नहीं यहाँ पर कहेंगे क्या क्या गाली दे रहा था। इस तरह से गाली देते हुए पीछा कर रहा था और बार बार कह रहा था, जब तक मेरे बाणों से तुम पृथ्वी पर सो न जाओ, उसके पहले मेरे बहन का त्याग करो, छोड़ो रुक्मिणी को। यदि तुम रुक्मिणी को छोड़ दोगे तब तुम्हारा वध नहीं करूंगा, रुक्मिणी को छोड़ करके जाओ कुशल अपने घर, छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। भगवान तो हंस रहे थे, क्या बोल रहे आते आते तो भगवान रुक गए। तो भगवान पर उसने बाण मारा, भगवान ने तत्काल ही अपने धनुष से बाण चला करके उसके बाणों को नष्ट कर दिया, उसका रथ भी तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अंत में उस तलवार लेकर के कृष्ण का वध करने जा रहा, खड़ग लिया तलवार और वध करने जा रहा, तो भगवान ने उसके तलवार को भी खत्म कर दिया। इसके बाद झपट करके भगवान उसको पकड़ लिया, पकड़ करके पहले हाथ बांध दिए पीछे से, हाथ बांध करके और तलवार से उसका सेविंग करने लगे। यह अपमान है वीरों का, जगह जगह छोड़ देते थे केस, कोई ऐसा नहीं था कि खूब सिस्टमेटिक सेविंग कर रहे हैं, केवल केस काटना या अपमान करने जैसे। इसके बाद रथ में बांध लिए और भगवान जा रहे थे पहले मारने, वध करने जा रहे थे पकड़ कर रथ तलवार से, तब तक रुक्मिणी जी पैर पर गिर गए। रुक्मिणी जी थर थर कांप रही थी और भगवान से कहने लगे कि कृपया आप इनका वध न करें, ऐसा न करें, ऐसा न करें। कुछ भी है तो भाई की ममता उछल गई मन में, भगवान तो मारने नहीं जा रहे थे, केवल ऐसे अभिनय मात्र कर रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ करके तब बांधा, उसको दंड देना ही चाहिए था। जान नहीं मारे तो ठीक किए, लेकिन उसका केस काट दिए और बांध करके रख लिए, द्वारका ले जाएंगे। तब तक श्री बलराम जी आ गए। बलराम जी इसकी सेना को नष्ट करके बलराम जी आगे बढ़े तो देखे कि रुक्मी की दशा, रुक्मिणी रो रही थी, यदि उसका वध भगवान ने नहीं किया तो वही रुक्मी जो रुक्मिणी का विवाह रोक दिया था, शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी जी का स्वभाव देखे, अपने भाई को केवल बांधा हुआ देख करके, उसका केस काटा हुआ देख करके वो रो रही थी। भगवान से वो कह नहीं सकती थी कि आपने ठीक नहीं किया, लेकिन रो रही थी भाई की दशा देखकर। तो श्री बलराम जी आए, श्री बलराम जी को हंसी आ रही थी, कितना अज्ञान में रुक्मिणी है, इसके विवाह को वही रोक रहा था, यही रोक रहा था, लेकिन इसकी दुर्दशा से यह दुखी है। तो श्री बलराम जी पहले सांत्वना देने लगे रुक्मिणी को, वो कहे कि देखो देवी, विधाता ने क्षत्रियों का ऐसा स्वभाव बनाया है कि इसमें बंधु बांधव नहीं देखा जाता, इसलिए कृष्ण ने जो कुछ किया है क्षत्रिय स्वभाव के कारण किया है, इसलिए इस पर तुम ज्यादा सुख मत करो। यह कह करके फिर वे कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण देखो कोई अपना बंधु भी है, अपना बंधु है, अगर कोई गलती भी करे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा तो क्या मैं वध कर दिया हूं? आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं वध नहीं करना चाहिए, तो वध किया हूं क्या? तो भगवान बलराम जी कहते हैं देखो, अपने बंधु का या सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना है उसका वध माना जाए। कोई अपना बंधु है, अपना संबंधी है, उसका केवल त्याग भी कर दिया जाए तभी वो वध के समान माना जाता है। तो तुम तो त्याग की बात क्या, इसका केस तक काट दिए हो, मस्तक काटने जैसा, ये ठीक नहीं किया। तो कृष्ण को डांटते थे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी है तो अपना साला है, इसको ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। तो फिर रुक्मिणी को कहते रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, क्या कहा जाए क्षत्रियों का ऐसा स्वभाव, ये जो अहम ममेति की भावना होती है यह गलत है। बहुत सुंदर फिलॉसफी बलराम जी ने समझाया है जिसको हम कल कहना चाहते हैं, स्वतंत्र अध्याय है, बहुत सुंदर गीता जैसी फिलॉसफी है श्री बलराम जी के मुख कमल से। तो अंत में उनको समझाते, कई बार कृष्ण को कभी समझाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर रुक्मिणी को कहते हैं तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अंततः उन्हें रुक्मिणी का शोक दूर करना था, भगवान को नहीं समझाना था, भगवान थोड़े गलती करते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को समझाना था। तो आज रुक्मिणी को कुरूप कर देने के कारण, केस काट देने के कारण बलराम जी इस तरह कृष्ण को डांट रहे थे, समझा रहे। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी और बलराम जी ताश खेले, जुआ खेलेंगे, और उसमें वो गलती करेगा, बेईमानी करेगा, बलराम जी को कहेगा कि आप लोग गाय चराइए तो राजा लोग पासा खेलते हैं, आप तो जानते नहीं हैं। तब तक आकाशवाणी ने कह दिया कि सच कहा जाए तो बलराम जी ने जीता है इसको। कई बार ऐसा झूठ बोला था रुक्मिणी, वो राजाओं का खेल था और उसी की लड़की का विवाह था, रुक्मिणी अपनी लड़की का विवाह कर रहा था अनिरुद्ध जी के साथ, इसलिए कि रुक्मिणी कहती थी कि कृष्ण से बैर करना ठीक नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। तो एक विवाह का संबंध स्थापित करके भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहता था रुक्मिणी के कहने से। तो अपनी बेटी का विवाह किया था भगवान के पौत्र से, विवाह हुआ हो गया था सब, और जुआ हो रहा था, जुआ में सब दाव जीत रहे थे बलराम जी, लेकिन वो झूठ बोल करके कपट से कहता था मैं जीता हूँ, तो आकाशवाणी ने कह दिया कि इसको बलराम जी ने जीता। तो श्री बलराम जी वहां पर अब कुछ भी विचार नहीं किए, सीधे रुक्मी को हल से पकड़े और एक मूसल मारे, वो तो वहीं मर गया। और जो राजा लोग हंस रहे थे खिलखिला करके, किसी को पकड़ करके मारे, दांत टूट गए, किसी के आंख फोड़े, किसी की भुजाएं टूट गई, किसी के कुछ, सब भाग गए, बिल्कुल रक्त रंजित हो गया उस समय। और रुक्मिणी जी बहुत दुखित हुई इस घटना पर, रे बाप हमारे भाई की मृत्यु हो गई, वो बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी, और भगवान बिल्कुल चुप रहे। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एकदम चुप हो गए, क्या कहें, और पत्नी का पक्ष में कि भाई का पक्ष में। और यदि भगवान यह कहते हैं कि बलराम जी ने ठीक किया, तो पत्नी रुठ जाएगी कि ये देखिए हमारे भाई का वध हुआ है, और ये कहते हैं। और भगवान अगर यह कह दे कि बलराम जी ने ठीक नहीं किया, तो बलराम जी के मन में बैठ जाएगा कि अपने वाइफ का ही पक्ष लेता है, ये कुछ लेता नहीं। कुछ ऐसा अवसर होता है उस समय मनुष्य को नहीं बोलना ही सबसे अच्छा होता है, चुपचाप क्या किया जाए। और तो बलराम जी चाहे रुक्मिणी दोनों भगवान के बिल्कुल अपने हैं, किसको क्या कहा जाए। और वही बलराम जी केस काटने के कारण किसी को डांट रहे थे और आज जान से मार दिए। भगवान की अद्भुत लीला है वो दिखा रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बलराम जी ने कहा कि नहीं, अपने बंधुओं में युद्ध हो रहा है इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा, साफ कह दिया। कृष्ण को कह दे कि तुमको जो करना है करो। भगवान ने कहा कि मैं तो किसी भी हालत में अर्जुन को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो कुछ भी है, मैं तो अर्जुन के साथ रहूंगा, मैं भी युद्ध नहीं करूंगा लेकिन मैं अर्जुन के साथ रहूंगा। बलराम जी ने कहा ठीक है तुमको जो करना है करो, हमारे लिए तो दोनों एक समान हैं, दाहिने बाएं आंख के समान है, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। युद्ध में भाग नहीं लिया जो उचित युद्ध था, और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और जाकर नैमि शरण में एक ऋषि को मार दिया। भगवान की लीला समझ में नहीं आती क्या करेंगे, इधर क्षत्रियों के साथ युद्ध नहीं करेंगे, उधर कथा कहने वाले साधु को मार दिया, इसलिए तो उसका प्रणाम नहीं किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की इच्छा में और बलराम जी की इच्छा में विरोध जैसा होता है, लेकिन एकदम विरोध नहीं, ये भगवान की ही दूसरे भगवान के ही दूसरे रूप है। तहर द्वितीय देह श्री बलराम, कोई भेद नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भेद है, ये है वो है। तो वही व्यक्ति जो केस काटने के कारण कृष्ण को डांट रहे थे आज जान से मार दिए, और कोई भी इस पर कमेंट नहीं कर सकता था कि बलराम जी ने गलत किया, किसी के साहस नहीं था कुछ कहने, और उन्होंने ठीक किया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक किया था, इस तरह से हंसना ईश्वर के प्रति। वो रुक्मिणी कहता था कि अरे आप राजा थोड़े हैं कि ये पासा खेलना जानते, जय जय गाय चराइए, और झूठ बोल रहा जबकि ये जीत रहे हैं, जय जय गाय चराइए, बकरी भेड़ चराइए आते हैं, जब ज्ञान नहीं है तो क्या खेलने बैठ जाते। अब तो काफी हो गया था, आकाशवाणी ने कहा तो मारा गया। तो उसी रुक्मिणी का वध किया बलराम जी ने आज, जिसको वो छुड़ा रहे थे। भगवान ने उनसे कभी न कभी कहा होगा कि उस दिन केस काट दिया था तो आप ऐसे कह रहे थे और फिर आपसे मार दिया। जो भी हो दोनों ईश्वर हैं और उनकी लीलाएं कुछ भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु मनोभाव एक रहता है। रुक्मिणी को भगवान ने सांत्वना दिया है बलराम जी ने, तो वो सिद्धांत बहुत सुंदर सिद्धांत है जिसे कल हम लोग कहेंगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज टू द सिमिल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सिमिल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सिमिल डिवोटीज। जय श्रील प्रभुपाद। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यसतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 19 से प्रारंभ करेंगे। 54वां अध्याय। 19 प्रारंभ करेंगे। कल बहुत संक्षेप में हम बढ़ गए थे। रुक्म्यामर्षिषु संरब्ध श्रृणवतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहु दंसितः सशरासनः अहत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्युह्य च रुक्मिणीम् कुण्डिनम् न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः।
प्रतिजज्ञे महाबाहु दंसिता सशरासनः
अहत्वा समरे
कृष्णम् अप्रतुह्य च रुक्मिणी कुण्डिनम् न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः।
रुक्म्यमर्षिषु
संरब्ध शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहु दंसितः सशरासनः अहत्वा समरे कृष्णम् अप्रतुह्य च रुक्मिणी कुण्डिनम् न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः। शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहु
हिंसिता स शरासन अहत्वा समरे कृष्णां अप्रत्यय च रुक्मिणी कुंडिनं न प्रयच्छामि एतद्ब्रवीमि वः रुक्म्यमर्षिषु संरब्ध श्रृणवतां सर्वभूभुजाम् प्रतिजज्ञे महाबाहो दंशितः शरासनः अहत्वा समरे कृष्णं अप्रत्यज्ञ च रुक्मिणी कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्भवीमि वः
रुक्मी रुक्मी अमर्षी असहनशील सुसंरब्ध अतिशय क्रुद्ध श्रृणवताम सुनते हुए सर्वभूभुजाम समस्त राजाओं के प्रतिज्ञे प्रतिज्ञा किया महाबाहुः उसकी विशाल बाहें थीं ऊपर उठाकर दंशितः कवच बांधकर शरासनः धनुष और बाण के साथ धनुष के साथ तो श्री रुक्मिणी जी का हरण कर भगवान जब चल दिए तो जरासंध आदि राजा पीछा किए भगवान का, तो भगवान श्री बलराम आदि ने मिल करके जरासंध शिशुपाल आदि की सेना का नाश कर दिया और जो राजा बचे वे अपने अपने देश लौट गए। परंतु उनके लौटने से पहले रुक्मी जो रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था वह इस घटना को सह नहीं सका। अमर्षि मर्ष का अर्थ होता है सहन करना और अमर्ष का अर्थ नहीं सहना और अमर्षि का अर्थ नहीं सह सकने वाला सह नहीं सका। इस प्रकार उसके मनोरथ पर आघात किया गया था। प्रारंभ से ही वह इस प्रयास में था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो और बहुत बड़ी तैयारी थी, बहुत भारी भारी सेनाएं इकट्ठी की गई थी, परंतु इसके मन का हुआ नहीं। रुक्मिणी को चाहिए था कि वह यह मान ले कि ईश्वर की यही इच्छा थी और रुक्मिणी बहुत अच्छे पुरुष के साथ गई है, परंतु वह इस घटना को सह नहीं सका, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं कर सका और बहुत क्रोध में हो गया। तो अपना पराजय बर्दाश्त नहीं हुआ और कृष्ण के प्रति बहुत क्रोध हुआ। अमरसी और सुसंरब्ध ये दो उसके गुण बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सह नहीं सका और बहुत क्रोध में हुआ। तो सर्वभूभुजम श्रृणवताम समस्त राजाओं के सामने प्रतिज्ञ प्रतिज्ञा किया। उसकी विशाल मोटी मोटी भुजाएं थी, अपनी भुजा में वो धनुष को उठा करके तथा कवच बांध करके राजाओं के सामने प्रतिज्ञा किया, शपथ लिया। क्या बोला? अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीमि वः। समरे
कृष्णम अहत्वा। युद्ध में कृष्ण का वध न करके और रुक्मिणी च अप्रत्युह्य, रुक्मिणी को न लौटा करके मैं कुंडिनम न प्रवेक्षामि, कुंडिन में प्रवेश नहीं करूंगा। उसके पिता की राजधानी थी, अपने राजधानी में नहीं लौटूंगा। इतना सुंदर राजभवन था इसका, सारी प्रजा मंत्री आदि सब वहां रहते थे, लेकिन क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती है आदमी की, क्रोध में प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं कुंडिनम न प्रवेक्षामि, इस कुंडिन में प्रवेश नहीं करूंगा। सत्यम एतद् ब्रवीमि, वह वह का अर्थ है जुष्माकम् जुष्माभ्यम्, आप सभी से मैं यह सत्य वचन बोल रहा हूं। तो उसमें इस वाक्य में यह शब्द छिपा हुआ, यदि छिपा हुआ है, यदि युद्ध में कृष्ण का वध नहीं कर सका और रुक्मिणी को नहीं लौटा सका तो कुंडिनम न प्रवेक्षामि, कुंडिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। किसी से राय नहीं लिया, किसी से परामर्श नहीं किया, क्रोध में असहनशीलता में इस तरह से अब कोई करे तो कौन दोषी, और मुख से निकल रहा है कृष्णम समरे अहत्वा, मैं कृष्ण को युद्ध में मार नहीं सकूंगा। सरस्वती जी यह बोल रहे उसके जीव पर, और यदि लगाया होता लेकिन क्रोध में वो भी भूल गया है कि यदि कृष्ण को युद्ध में नहीं मार सका और यदि रुक्मिणी को नहीं लौटा सका तो कुंडिन में नहीं प्रवेश करूंगा, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन क्रोध में असहनशीलता में वो क्या बोल रहा है उसको स्वयं ही पता नहीं था। राजाओं के सामने प्रतिज्ञा किया और राजा भी कोई समझाया नहीं कि क्या उठपटांग प्रतिज्ञा कर रहे हो, मरने जा रहे हो, चुपचाप रहो, जो हुआ सो हुआ। जब सब राजा हार गए, जरासंध भी लौट आया, भाग गया युद्ध से, शिशुपाल भी, सब अब ये प्रतिज्ञा की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अमरसी और सुसंरब्ध, इन दोनों ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया। ऐसी सुंदर घटना हुई थी कि भगवान उसके बहन के साथ विवाह किए ले गए, तो ये तो बहुत सहन करने लायक बात, क्या स्वागत करने लायक बात थी। भगवान का स्वागत करना चाहिए था, दहेज लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा कर रहा है। वाणी भी ऐसे निकल रही, सरस्वती जी बिल्कुल सावधान है। इत्युक्त्वा रथमास्थाय सारथिं प्राह सत्वरः, यह कह करके प्रतिज्ञा करके कि यदि मैं कृष्ण का वध नहीं कर सका, रुक्मिणी को नहीं लौटा सका, तो इस अपने बाप के नगर में नहीं लौटूंगा, यहां नहीं रहूंगा। यह बहुत भारी दंड होता है किसी को किसी के आवास से, राजधानी से, देश से निकाल देना, इसको देश निकाला कहते हैं, बहुत बड़ा दंड है। लेकिन ये अपने आप ऐसी शर्त कर लिया कि यदि नहीं ऐसा किया तो मैं इस नगर में नहीं आऊंगा। यह कहकर समस्त राजाओं के सामने रथ पर चढ़ा, रथ पर चढ़ा, इत्युक्त्वा रथम आस्थाय सारथिम प्राह सत्वर, चढ़ते ही त्वर बहुत जल्दी कहा सारथी से, सारथी घोड़ों को प्रेरित करो, अर्थात हां को जल्दी करो। तो सारथी चकित हुआ कि कहां ले जाने के लिए कहते हैं रथ को। जटा कृष्णा